आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय सूचना प्रौद्योगिकी। ये कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का 13वां अध्याय है। बच्चों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमने जो बातें लास्ट क्लास में पिछली क्लास में पढ़ी थी उनको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में टेलीविजन के बारे में बताया था। आप लोगों को भी मालूम है कि टेलीविजन दिखने में किस तरीके का होता है। लगभग आजकल हर किसी के घर में एक टेलीविजन तो होता ही है, तो आप लोगों को देखने में तो पता ही है कि टेलीविजन कैसा होता है और उसको आप किस इस चीज़ में इस्तेमाल करते हो वो भी आपको पता है कि आप उसमें चलते फिरते चित्र देख पाते हो, साथ में आप ध्वनि को भी सुन पाते हो। ये जो टेलीविजन है, मैंने आपको बताया था, इसको सबसे पहले इसका जो आविष्कार हुआ था वो जॉन लॉगी बेयर्ड नाम के एक व्यक्ति ने किया था। इन्होंने 26 जनवरी 1926 को सबसे पहले ब्रिटेन में टेलीविज़न का सफल परीक्षण करके दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप टेलीविज़न की हेल्प से किसी भी दूसरे देश में कहीं पर कुछ घटना घट रही हो तो उसकी न्यूज़ को आप अपने टेलीविज़न पर उसका आंखों देखा हाल देख पाते हो। हमारे देश में टेलीविज़न सबसे पहले 1959 में दिल्ली में आई थी, सितंबर के महीने में। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी कि टेलीविज़न मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं, एक श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट होते हैं और दूसरा रंगीन होता है। आजकल तो लोग रंगीन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में श्याम श्वेत का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टेलीविज़न कैसे काम करता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि टेलीविज़न का जो भी प्रसारण केंद्र होता है, मतलब कि जो जो चैनल जो आपको वो टीवी पर जो प्रोग्राम्स आपको दिखाए जाते हैं वो अलग अलग प्रसारण केंद्रों में उन प्रोग्राम्स को बनाया जाता है और फिर उनको चुंबकीय विद्युत तरंगों के माध्यम से उसको आकाश में छोड़ दिया जाता है और फिर वो सैटेलाइट से टकराते हैं और सैटेलाइट से टकराने के बाद वो धरती पर वापस से छोड़ दिए जाते हैं और अलग अलग एंटीना जो घरों में लगे होते हैं लोगों के उस पर वो टकराते हैं और वो एंटीना जो होता है उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त कर लेता है, रिसीव कर लेता है और उसके बाद में वो उन्हें कन्वर्ट कर देता है फिर से ध्वनि के रूप में और चित्रों के रूप में और वो आप अपने घर के अंदर टीवी के ऊपर देख पाते हो। हमारे टीवी में कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जिसकी मदद से ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनको हमारा जो टेलीविज़न है वो ध्वनि और चित्रों में बदल देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेलीविज़न सेट में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं ये भी बताया था मैंने। ट्यूनर लगा होता है, एम्पलीफायर लगा होता है, डिटेक्टर परिपथ लगा होता है, पावर सप्लाई का भी एक सिस्टम होता है उसमें, और पिक्चर ट्यूब और लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं। लाउड स्पीकर आपको पता है क्यों लगे होते हैं, ताकि उसमें से आपको ध्वनि सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे। और पिक्चर ट्यूब का क्या यहाँ पर इस्तेमाल था वो भी मैंने आपको बताया था। सामान्य भाषा में पिक्चर ट्यूब को पर्दा कहा जाता है। आप लोग देखते हो कि पर्दे के ऊपर ही आप पिक्चर को देख पाते हो, तो जो दृश्य आपको दिखाई देता है उसको दर्शाने के लिए, उसको आपको दिखाने के लिए पिक्चर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पर्दा होता है जिसको पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है उसके ऊपर प्रकाश संवेदी पदार्थ लगे होते हैं, करीब 2 लाख उसके बिंदु होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संवेदी पदार्थ से यहाँ पर क्या मतलब है कि जब भी जो लाइट पड़ती है उन प्रकाश संवेदी पदार्थों पर, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो ये समझ जाते हैं कि वो किस तरीके का प्रकाश है और उसको किस रूप में लोगों को दिखाना है, क्योंकि उसमें से अलग अलग रंगों की लाइट निकलती है इन प्रकाश संवेदी पदार्थों में से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रंगीन टेलीविज़न होता है उसके कैमरे में 3 इलेक्ट्रॉन ट्यूब होते हैं जिसके अंदर ऐसे दर्पण लगे होते हैं जो कैमरे में आने वाली रोशनी को 3 भागों में उसे बांट देते हैं। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी कि जो टीवी होता है उसको मैनुअल तरीके से भी ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब आप उसको खुद, उसके बटन्स जो होते हैं टीवी पर लगे हुए उनको खुद दबाकर उसको ऑपरेट कर सकते हो, या फिर उसको आप किसी रिमोट कंट्रोल की मदद से भी उसे नियंत्रित कर सकते हो, टीवी के चैनलों को चेंज कर सकते हो, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो ये जो रिमोट कंट्रोल होता है ये आपके घरों में भी होगा, आपने देखा हुआ होगा कि ये छोटा सा आयताकार डिब्बा होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, रेक्टेंगल के शेप का डिब्बे जैसा होता है जिसमें अलग अलग बटन लगे होते हैं। जब आप उन बटनों को दबाते हो तो उस रिमोट कंट्रोल में से अदृश्य तरंगे ऐसी वेव्स निकलती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती हैं, और वो टेलीविजन जो होता है वो उसको समझ जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। उसके बाद हमने बात की थी कि आजकल के युग में, वर्तमान युग में हमारे पास अलग अलग के जो टेलीविजन हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमने बात की थी कि फ्लैट टीवी हो गया है, चाहे एलसीडी टीवी हो गया है जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी कहते हैं, या फिर एलईडी टीवी हो गया है जिसे लाइट एमिटिंग डायोड टीवी कहते हैं, या फिर कर्व टीवी हो गए हैं। ये अलग अलग टीवी जो होते हैं इनके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे टीवी होते हैं उसके ऊपर हम जो अलग अलग चैनल देख पाते हैं वो भी हम अलग अलग ऑपरेटर्स की मदद से देख पाते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो केबल टीवी का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट टू होम, जो आजकल डिश टीवीज लगे होते हैं लोगों के घर में जो एंटीना होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो डीटीएच का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे डायरेक्ट टू होम सेवा कहा जाता है। डीटीएच में आपको पता होगा कि आप लोग अपने घरों पर एक एंटीना लगा देते हो और जो भी कोई प्रसारण करने वाला इंसान होता है, मतलब जो वो प्रोग्राम को बना रहा है, जिस प्रोग्राम को आप अपने टीवी पर देखते हो, तो उस प्रोग्राम को वो सैटेलाइट्स में भेजता है, मतलब कि उपग्रहों के पास भेजता है, और फिर वहाँ से टकरा करके ये आपके जो एंटीना होते हैं उस पर टकराते हैं, और जो एंटीना होता है उसको प्राप्त कर लेता है, रिसीव कर लेता है, और उसके बाद वो आपके घरों में अलग अलग चैनलों में अलग अलग प्रसारण, आपको अलग अलग कार्यक्रम नज़र आ पाते हैं। उसके बाद आप लोगों को भी पता है कि जो आपकी जो डीटीएच की होती है एंटीना, ये करीब 50 से 75 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होती है, यानी कि व्यास होती है, और इसको आप डिश एंटीना के रूप में इस्तेमाल करते हो। फिर आपको यहाँ पर चित्र के रूप में भी दिखाया गया है कि डीटीएच किस तरीके का दिखता है, तो यहाँ पर आप चित्र 13.4 देख सकते हो पेज नंबर 144 के ऊपर। उसके बाद हमने बात की थी ईमेल की। जब भी कहीं पर में ई लगा होता है उसका मतलब कि वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, उसका फुल फॉर्म वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से बताया जा रहा है, तो ईमेल का मतलब भी इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो आप लोग चिट्ठी भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह पर पत्र लिख करके, वही काम हम ईमेल के ज़रिए भी करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेट और कंप्यूटर को यूज़ करके हम चिट्ठी लिखते हैं एक कंप्यूटर में, और वही चिट्ठी जो होती है वो जिसको हम सेंड करना चाहते हैं अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, चाहे किसी को भी, उन तक वो चिट्ठी पहुंच जाती है जब उनके पास भी इंटरनेट या फिर मोबाइल या फिर कोई टीवी या फिर कंप्यूटर हो तो। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो होता है वो हमारी नॉर्मल भाषा नहीं समझता, वो हिंदी या अंग्रेजी या चाइनीज़ या जापानीज कोई भाषा नहीं समझता, उसकी खुद की भाषा होती है जो कंप्यूटर की कोडिंग होती है। तो जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो कंप्यूटर जो होता है उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद दूसरे जिसके पास हम वो पत्र भेजना चाहते हैं उसके पास वो पत्र पहुंच जाता है, और फिर से वहां पर उसको वो ऐसी भाषा में बदल देता है जिस भाषा में हमने भेजा था, और जो रीडर होता है जिसके पास अपने पत्र भेजा है वो उसको पढ़ पाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिस इंसान के पास अपन पत्र भेजना चाहते हो, ईमेल भेजना चाहते हो, उसके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके पास इंटरनेट होना चाहिए जो आजकल टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए लोगों के घरों में हो पाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है, जो पत्र हम किसी के पास भेज रहे हैं उसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो ईमेल होता है इसमें हम कागज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें हम इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर के ज़रिए भेजते हैं पत्र, तो यहाँ पर कागज़ की बचत होती है, समय की भी बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है बहुत ही एक तीव्र प्रणाली है। हमारे देश में दूर संचार विभाग के स्थित सी डॉट या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 जो केंद्र हैं, और भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में हैं, ये जो अलग अलग जगह हैं यहाँ पर क्या किए जाते हैं, ईमेल के ऊपर काम किया जाता है कि इसको और भी कैसे आसान बनाया जाए लोगों के लिए, और इसके लिए जो भी इसमें विकास करना है उसके ऊपर इन जगहों पर काम होता है। उसके बाद आगे हमने बात की थी कृत्रिम उपग्रहों की, और उनसे हम संचार कैसे इस्तेमाल करते हैं, संचार कैसे करते हैं कृत्रिम उपग्रहों का इस्तेमाल करके, उसके बारे में हमने बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कृत्रिम का जो नॉर्मल मतलब होता है उसका मतलब होता है नकली, तो हम नकली जो उपग्रह बनाते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, जो हमारे धरती के आसपास जो भी ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे हम धरती का उपग्रह कह देते हैं। इसी तरीके से किसी और प्लैनेट के, किसी और ग्रह के आसपास कोई चक्कर लगाएगा दूसरा ग्रह, तो उसको उसका उपग्रह कह दिया जाएगा। जैसे जो सूरज होता है, सूरज के आसपास धरती चक्कर लगाती है और भी अलग अलग ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, इन सभी को सूरज का उपग्रह कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपको पता है कि जो चांद होता है वो धरती के चक्कर लगाता है, इसीलिए चांद धरती का उपग्रह होता है। लेकिन ये जो उपग्रह हैं, ये प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपग्रह इंसान अपने इस्तेमाल के लिए धरती के आसपास उनका चक्कर लगवाता है और उनका इस्तेमाल करता है संचार के साधनों में। तो इसलिए इनको कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनको नेचर ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया, हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। इन कृत्रिम उपग्रहों का कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजते हैं, टेलीफोन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, टीवी वगैरह में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम अपनी आवाज़ को, अपनी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भेज पाए। उसके बाद आगे हमने बात की थी कंप्यूटरों की। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर भी आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, आजकल इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कंप्यूटर जो होते हैं, उनका यूज़ हर जगह, हर क्षेत्र में बढ़ चुका है। और इनका ये एक ऐसी मशीन है जो एक सेकेंड के अंदर में 1000 शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर 1000 शब्द तुरंत टाइप करोगे, आपने टाइप करके जो रखा होगा, जो मैसेज तैयार किया होगा, उस मैसेज को वो एक सेकंड के अंदर में 1000 शब्दों को करीब करीब एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँचा देता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप अपने मुँह से बोलने की कोशिश करोगे तो इतनी जल्दी जल्दी आप इतने ज़्यादा जो शब्द हैं, 1000 शब्द एक सेकेंड में नहीं बोल पाओगे। इसलिए कंप्यूटर को कहा जाता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है। उसके बाद जो कंप्यूटर होता है उसकी लैंग्वेज अलग होती है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, और इसीलिए क्या होता है कि पहले अगर हम उसमें कोई मैसेज को टाइप कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है कंप्यूटर की कोडिंग के जरिए ही वो हो पाता है। कंप्यूटर के अंदर में इंजीनियर्स ने कुछ कोडिंग ऐसी की होती है कि वो हम जो टाइप करते हैं उनको वो समझ पाता है, उसको वो अपनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है और उसी के हिसाब से वो फंक्शन करके आपको देता है। उसके बाद हमने यहीं पर बात की थी ISDN के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के बारे में। मैंने आपको बताया था कि दूरसंचार के क्षेत्र में ये एक अति आधुनिक तकनीक है, मतलब कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर के होने के वजह से ही संभव हो पाई है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि एक ही तार के ज़रिए आप आवाज़ को, लिखित सामग्री को, आंकड़ों को और चित्रों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हो। उसके बाद हमने आगे बात की थी इंटरनेट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट की मदद से क्या हुआ है, इंटरनेट की मदद से ये हुआ है कि जो विश्व में अलग अलग जगहों पर जो भी कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटरों के नेटवर्क को टेलीफोन लाइन की सहायता से जोड़ जोड़ करके विश्व के स्तर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको जोड़ जोड़ करके एक जाल सा बना दिया गया है, एक नेटवर्क सा बना दिया गया है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, आप एक जगह से मैसेज भेजते हो किसी कंप्यूटर की हेल्प से और दूसरी जगह पर वो मैसेज पहुँच जाता है। तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें अगर इंटरनेट होगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे कि एक जगह से मैसेज को हम दूसरी जगह पर पलक झपकते ही हम पहुंचा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट जो शब्द है ये अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है, इंटरनेशनल और नेटवर्क, और इसको मिला करके इसको बनाया गया है इंटरनेट। और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, विश्वव्यापी तंत्र, मतलब कि पूरे विश्व में जो फैला हुआ है ऐसा एक जाल, ऐसा एक तंत्र। और आपको पता है कि इंटरनेट में, मैंने आपको बताया था, आपका जो इंटरनेट होता है, जैसे एक देश में आप बैठे हो, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन है, दूसरे देश में कोई दूसरा इंसान बैठा है उसके कंप्यूटर में भी इंटरनेट का कनेक्शन है। आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करके आपने कोई मैसेज भेजा और दूसरे देश में जो इंसान बैठा हुआ है उसके पास आपका मैसेज पहुंच जाता है। आपका कंप्यूटर उसके कंप्यूटर से किसी तार के ज़रिए जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो ये इंटरनेट है इसकी मदद से आप अपने मैसेज को एक देश से दूसरे देश में भेज पाते हो। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे एक इनविजिबल, एक अदृश्य तार सा बना हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि ये एक बेतार का तंत्र है, मतलब इसमें तार का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो अपने मैसेज को तो उन कंप्यूटरों को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन उनको इंटरनेट देने के लिए तार लगाया जाता है, लेकिन उन कंप्यूटरों को आपस में नहीं जोड़ा गया है, वो इंटरनेट की मदद से जुड़ जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये इंटरनेट होता है ये एक बेतार का तंत्र है। तो बच्चों ये तो हमने बात कर ली कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि इंटरनेट की हेल्प से हम क्या क्या सुविधाएं पा सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो बच्चों वैसे तो आप लोगों को काफ़ी सारे इंटरनेट के यूज़ खुद भी अभी पता होंगे, आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे गेम्स वगैरह खेलते हो, चीज़ों को यूज़ करते हो, इंटरनेट की हेल्प से वीडियो देखते हो, और भी कई सारे ऐप्स को आप जो यूज़ करते हो तो वो इंटरनेट की हेल्प से ही हो पाता है। तो आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शॉपिंग करते होंगे, चीज़ों को खरीदते भी होंगे आप अपने इंटरनेट की हेल्प से, जो भी कोई चीज़ है कहीं दूसरी जगह पर है और आपको वो चीज़ मंगवानी है तो भी आप इंटरनेट में उसको ऑर्डर कर देते हो और फिर वो आपके घर पहुंच जाता है, आप उसकी पेमेंट कर देते हो। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में पहले सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ई कॉमर्स के बारे में। ई यहाँ पर लगा हुआ है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर का, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। कॉमर्स बच्चों कोई भी चीज़ बिजनेस से रिलेटेड होती है ना उसको कॉमर्स से जोड़कर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रॉनिक किसी गैजेट का, किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब या तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, उस पर बिजनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि इंटरनेट में आप अलग अलग चीज़ों को देखते हो, अलग अलग जो भी विज्ञापन है उनके बारे में देखते हो, तो इंटरनेट की हेल्प से जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं या उसके बारे में विज्ञापन दे करके हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास हम सूचना पहुंचाते हैं तो उसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि इस इंटरनेट के इस्तेमाल में, ये जो ई कॉमर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से पूरा का पूरा विश्व ही एक मंडी में बदल गया है। यहाँ पर एक ऐसी मंडी बन गई है, एक ऐसा बाजार बन गया है जहाँ पर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ को आप खरीद सकते हो ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके। ई कॉमर्स की अलग अलग वेबसाइट होती है जहाँ पर आप अपने मनपसंद की चीज़ें देखते हो, उनको पसंद करते हो और अपना ऑर्डर उस पर डाल देते हो और उसके बाद वो चीज़ आपको आसानी से आपके घर में मिल जाती है। उसके बाद आपको पता है कि आप अगर इंटरनेट पर कोई चीज़ खरीद रहे हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो आपको वहाँ पर आप कैश नहीं दे सकते हो, वहाँ पर आप नोट नहीं दे सकते हो, आपको वहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे आसान तरीका जो है ई कॉमर्स पर कोई भी चीज़ खरीदने का या ऑर्डर करने का, तो वो क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप बहुत आसानी से कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, खरीद सकते हो। उसके बाद बच्चों ये जो ई कॉमर्स होता है इस पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के नेटवर्क का, इंटरनेट का, वर्ल्ड वाइड वेब का, या फिर EDI का, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेस का, ईमेल का, EFT का, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफ़र का, इन सब चीज़ों का, इन सब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम जो ई कॉमर्स है उसको हम एक महत्वपूर्ण, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाते हैं, एक ऐसी जगह बना पाते हैं जहाँ पर हम बहुत ही सफल तरीके से बिजनेस को कर पा रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको चित्र 13.6 में पेज नंबर 145 पे आप देख सकते हो, आपको बताया गया है कि ई कॉमर्स के ज़रिए आप कैसे सामान को खरीदते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया है कि ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट पर आप गए, उसके बाद आपने क्या किया, आपने सामान को उस पर देखा, तो जो वो सामान है उसमें आपने उसको ख़रीदने के लिए बैंकों में भुगतान किया उस पैसे को, उसके बाद वो जो पैसा है गोदाम तक पहुंच जाता है और उसके बाद उस गोदाम से उस सामान को जिसको आपने ऑर्डर किया है वो माल परिवहन, मतलब कि जो भी गाड़ी है उसके ऊपर वो लोड हो जाती है और उसके बाद जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसके पास वो पहुँच जाता है प्रोडक्ट जो उसने ऑर्डर किया है। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल यहाँ पर इंटरनेट का है टेलीमेडिसिन के रूप में। इसमें क्या करते हैं कि जो दूर दूर की जगह होते हैं जहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं होता, चाहे वहाँ पर गाड़ी वगैरह आना जाना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर ऐसी जगहों पर क्या करते हैं, वहाँ पर इंटरनेट पहुँच जाए अगर, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से हम वहाँ पर डॉक्टर की और पेशेंट की बात करवा सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन का यूज़ करते हैं कब, मान लो जो डॉक्टर जिससे हम बात करना चाहते हैं वो बहुत दूर रहते हों और हम कहीं अलग बहुत दूर रहते हैं, तो हमें और वो भी हमारे तक नहीं पहुंच सकते और हम भी उन तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से हम इंटरनेट की हेल्प से बात कर सकते हैं और उनको हम देख भी सकते हैं। कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो दूसरी जगह पर बैठ करके जो मरीज़ है उसकी ECG की रिपोर्ट देख सकते हैं, उसकी एक्सरे की रिपोर्ट देख सकते हैं, CT स्कैन की रिपोर्ट देख सकते हैं, MRI की रिपोर्ट देख सकते हैं, और इन सब की तस्वीरें वो अपने कंप्यूटर पर वीडियो के जरिए देख सकते हैं और उनकी जांच करके जो दवा होगी उसको वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब कि सलाह दे सकते हैं मरीजों को कि तब तक उनको कौन सी दवा पर काम चलाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के रूप में भी दर्शाया गया है, पेज नंबर 146 पर चित्र 13.7 में आपको बताया गया है कि टेलीमेडिसिन सेवा में क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में जो कहीं दूर जो डॉक्टर है जिससे हमें बात करनी है उससे हम अपने घर पर बैठे बैठे भी बात कर सकते हैं, कंप्यूटर के पास में वीडियो के जरिए हम बात कर सकते हैं, उस इंसान की शक्ल देख सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, और वो इंसान जो होगा, जो डॉक्टर होगा, वो हमारी सारी रिपोर्ट्स देख सकता है, जैसे ECG, CT स्कैन, MRI, ये सब चीज़ें वो देख सकता है और उसके हिसाब से ही वो बता सकता है कि हमारी तकलीफ क्या है और हमें दवा किस तरीके की खानी चाहिए। उसके बाद अगला इस्तेमाल है यहाँ पर इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या होता है, ब्रॉडबैंड एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है हमारे सूचना के संचरण की। इसमें क्या होता है कि एक ही तार की हेल्प से, एक ही केबल का इस्तेमाल करके हम कई सारे चैनलों को एक साथ किसी जगह पर उसको हम प्रसारित कर सकते हैं, वहाँ पर हम उसको दिखा सकते हैं, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो इंटरनेट होता है वो बहुत ही हाई स्पीड का मिलता है उस जगह पर जहाँ पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ पर भी जिस भी किसी जगह पर अगर हाई स्पीड की इंटरनेट मौजूद है तो हम उसको ब्रॉडबैंड कह देते हैं। जैसे जो केबल के ऑपरेटर होते हैं वो भी कई जगहों पर इंटरनेट देते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड का होता है और स्टेबल होता है, अच्छे से चलता है इंटरनेट और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे इंटरनेट कनेक्शन जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उनको ब्रॉडबैंड कहा जाता है। और आपको पता है कि इंटरनेट के इस्तेमाल से आप कई सारे चैनलों को एक तार की हेल्प से देख सकते हो। उस तार में क्या होता है, उस तार के जरिए ही जो केवल आपका ऑपरेटर है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा है, वो अपनी जगह से तार की हेल्प से आपके घर पे इंटरनेट पहुँचाता है और उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप कुछ भी देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि ब्रॉडबैंड क्या होता है, कोई भी ऐसी सुविधा जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड का इंटरनेट यूज़ करते हो उसको ही ब्रॉडबैंड कहा जाता है। उसके बाद अगला इस्तेमाल है इंटरनेट का, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया क्या होता है कि ऐसी जगह, इंटरनेट पर ऐसी जगह जहां पर लोग मिलते हैं, बात करते हैं, अपने विचार को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जैसे कि जो फेसबुक होता है, चाहे जो ट्विटर होता है, ये सभी के सभी सोशल मीडिया के साइट्स हैं जहाँ पर लोग अपने विचार को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कई सारी सोशल मीडिया की साइट्स होती हैं जहाँ पर लोग ब्लॉग लिखते हैं, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में अपनी राय लिखते हैं और क्या उनको उसके बारे में जानकारी है वो लिखते हैं, या फिर बिजनेस के नेटवर्क होते हैं अलग अलग, इंटरप्राइज सोशल नेटवर्क होते हैं, अलग अलग फोरम होते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, फ़ोटो शेयर किए जा सकते हैं, ऐसी जगह होती हैं, उत्पाद या सर्विस रिव्यू दिए जाते हैं, मतलब कि कोई चीज़ उन्होंने यूज़ की तो उसके बारे में अपनी राय देते हैं, या फिर सोशल बुक मार्किंग होती है, सोशल गेमिंग होती है, सोशल नेटवर्क अलग अलग होते हैं, वीडियो शेयरिंग या फिर वर्चुअल वर्ल्ड भी होता है, ये सभी के सभी सोशल मीडिया के अंदर ही आते हैं। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, पिंटरेस्ट, टम्बलर्स, ये जो बहुत प्रचलित सोशल मीडिया साइट्स हैं इनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद बच्चों जो ये व्हाट्सएप होता है, हाइक होता है, ये भी सोशल मीडिया के मोबाइल के एप्लीकेशन से, मोबाइल पर ये जो ऐप होते हैं जहाँ पर आप अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हो, ये भी वही कहलाते हैं सोशल मीडिया के, ये भी साइट्स ही कहलाएंगे, व्हाट्सएप और हाइक। लेकिन इनको साइट्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये ऐप होते हैं, ये आपके मोबाइल में होते हैं, आपको कोई वेबसाइट नहीं ढूंढनी है, आपके मोबाइल के अंदर ऐप होता है, आप डायरेक्ट उसको यूज़ करते हो। तो ऐसी जो सुविधा होती है जिसमें आपको कोई वेबसाइट ढूंढनी नहीं होती है, डायरेक्ट आप उस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो उन्हें ऐप कहा जाता है। उसके बाद अब हमें बात करनी है ई मित्रा के बारे में। तो ये जो ई मित्र है ये भी एक इंटरनेट की हेल्प से ही, एक जो हम इस्तेमाल कर पाए हैं इंटरनेट की मदद से, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ई मित्र सेवा राजस्थान सरकार ने शुरू की थी और ई मित्र जो जो ये सेवा है इसके जरिए क्या हो रहा है कि ई गवर्नेंस की सुविधा दी जा रही है जो राज्य के सभी जितने भी 33 जिले हैं आपके राज्य में, राजस्थान में, वहां पर PPP यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पर इसको बनाया गया है। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो भी प्राइवेट कंपनीज जितनी हैं उनकी जो भी वो फैसिलिटीज देती हैं, उनकी जो सेवाएं होती हैं, और सरकारी फैसिलिटीज जो होती हैं, सरकार जो जो आपको सेवाएं देता है, उन सभी को एक ही छत के नीचे संचालित किया जा रहा है, उनको उनसे काम करवाया जा रहा है एक ही छत के नीचे। और ये जो एक ही छत है, ये प्लेटफॉर्म जिसके नीचे इनको काम करवाया जा रहा है, इसको ई प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। मतलब कि ई मित्र जो सेवा है, इसके जरिए आपको कोई भी सुविधा चाहिए, आपको किसी प्राइवेट कंपनी से कोई सुविधा चाहिए, किसी सरकारी संस्थान से कोई सुविधा चाहिए, तो आप ई मित्र के जरिए आपको वो सुविधा मिल पाती है। ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ष 2005 से चला आ रहा है, इसके ऊपर काम होता चला आ रहा है। और इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आपको कौन कौन सी सेवाएं मिल सकती हैं, आप बिजली का, पानी का, टेलीफोन का बिल या बोनाफाइड ये आप बिल भर सकते हो, बोनाफाइड प्रमाण पत्र आपको किसी उसमें बनवाना है, कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, तो वो सब भी आपको इसमें इसी के ज़रिए बनवा सकते हो, ई मित्र के ज़रिए। राशन कार्ड बनवा सकते हो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो आपको लोन मिलता है वो भी आपको ई मित्र की हेल्प से मिल सकता है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल सकता है, राजस्थान रोडवेज की बस पास आप इसके जरिए बनवा सकते हो बहुत आसान तरीके से। और ये आप बनवा कैसे सकते हो, आपको जाना पड़ेगा अगर आप गांव के इलाके में हो तो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क। कियोस्क का मतलब होता है कोई भी जो छोटे मोटे दुकान होते हैं सड़क के किनारे, जहां पर आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स या फिर कोई भी खाने की चीज़ें मिलती हैं, इनके पास में कुछ कुछ जो दुकानें हैं उनको ये सर्विस बताई गई है कि इनको लोगों को ये सर्विस देनी है, और इनको कहा जाता है कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क। और अगर कोई शहर का इलाका है तो वहाँ पर ई मित्र कियोस्क के नाम पर अलग अलग जगहों पर ऑनलाइन तरीके से आपको ये सभी की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उसके बाद बच्चों अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से हमारा जो समाज है वो कैसे सहज हो पा रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की वजह से हम ऐसा सोच पा रहे हैं, हम कल्पना कर पा रहे हैं, हम ऐसा सपना देख पा रहे हैं कि कोई दिन ऐसा आएगा जब भ्रष्टाचार से मुक्त हमारी जो समाज होनी चाहिए, जिसका हम सपना देखते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट की हेल्प से और ये जो अलग अलग सूचना प्रौद्योगिकी के साधन हैं इनकी हेल्प से हम इनको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी या फिर जो इंटरनेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प हमें किस तरीके से, इसका हम उपयोग करके कैसे कैसे हमें हेल्प मिलती है। तो पहला यहाँ पर बताया गया है कि जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS, मतलब जो ये राशन दिए जाते हैं लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनको जो राशन दिया जाता है, उसको भी अब वेब के जरिए इसको यूज़ किया जा रहा है कि कंप्यूटर को यूज़ करके जिन जिन लोगों को राशन मिलना चाहिए उनको राशन दिया जा रहा है। इसकी हेल्प से हम बहुत पारदर्शी तरीके से देख पाते हैं कि किन किन लोगों को राशन मिला है और कितना कितना राशन मिला है। तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी लेवल तक कम हो रहा है। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल है इंटरनेट का ये कि जन संबंधी जो प्रमुख कार्यालय हैं उनका कंप्यूटरीकरण और उनका नेटवर्किंग करके सेवाओं में समुचित सुधार किया जा रहा है। मतलब कि जो आपके पब्लिक के यूज़ के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं, जैसे आपको मान लो हॉस्पिटल में आपको कोई अपॉइंटमेंट करवाना है तो आप एम्स में आप अगर अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हो तो आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज़ करके आप वो अपॉइंटमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर लोगों की हेल्प के लिए ये सब चीज़ें भी की जा रही हैं कि जो लोगों की सुविधा की चीज़ें होती हैं उनको इंटरनेट पर डाला जा रहा है ताकि लोग उनका आसानी से उपयोग कर पाएँ। उसके बाद तीसरा इस्तेमाल है यहाँ पर कि भ्रष्टाचार के दूसरे प्रमुख कारण जो होते हैं, जैसे कि कार्य पद्धति में पारदर्शिता नहीं होती है कि कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे सरकारी अफसर काम करते हैं हमें पता ही नहीं होता, तो उसको और पारदर्शी बनाने के लिए कि हमें समझ में आए कि कैसे काम होता है, ये किया जा रहा है कि कंप्यूटर पर ही अब सभी के सभी अफसरों को जो भी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेजनी होती है तो वो कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके इंटरनेट का और एक्स्ट्रा नेट का इस्तेमाल करके वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी भेजते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें भी पता चल पाता है कि किस अफसर ने कितना काम किया है और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन वो भेज रहे हैं उससे हम समझ पाते हैं कि कितना हमारे जो भी हमने उनको अपना काम बताया था उस पर कितना काम हो रहा है और कितनी स्पीड से हो रहा है। उसके बाद अगला इस्तेमाल है कि भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर काबू पाने व सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग करके स्वच्छ व पारदर्शी शासन देने हेतु इलेक्ट्रॉनिक शासन की बात हमारे देश की सरकार कर रही है। मतलब कि जो ये भ्रष्टाचार होता रहता है, इतनी सारी हमें न्यूज़ में पता चलता रहता है कि इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना घोटाला हो गया, अब ये इसको ख़त्म करने के लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने ये सुझाव दिया है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से करना चाहिए। जो भी लोग शासन कर रहे हैं कि हम वो मान लो किसी मंत्री ने मान लो कोई ऑर्डर दिया है कि हाँ यहाँ पर कोई चीज़ का निर्माण आप कर दीजिए, तो आपको वो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन अब इंटरनेट पर मिल जाती है कि किस मंत्री ने अपने इलाके में कितना काम करवाया है और कितना फंड उनको मिला था, उसका कितना इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी आपको इंटरनेट के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक शासन के ज़रिए आपको मिल रही हैं बहुत आसानी से। उसके बाद अगला इस्तेमाल है कि बैंकिंग प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश ने अभूतपूर्व परिवर्तन कर न केवल ग्राहक सेवा में सुधार किया है अपितु वित्तीय घोटालों और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया है। इसका मतलब कि जो बैंकिंग सेक्टर है, मतलब जो बैंक होते हैं कि हम कोई लोन ले रहे हैं चाहे हम उनके पास FD करा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी वो लोग अब वहाँ पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें भी अब पता रहता है हमारे बारे में कि हमारा कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में है। और हमारा जो घोटाला वो बैंक पहले लोगों को कर लेती थी कि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे और बैंक उसका एडवांटेज उठा लेती थी, या जो लोग होते थे वो उनका एडवांटेज उठा लेते थे, मतलब कि उनको बेवकूफ़ बना देते थे। तो आजकल लोग ऐसा नहीं होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं बनता, क्योंकि उनको खुद की जानकारी होती है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं और कितने पैसे कब उन्होंने कहाँ पर किस इस्तेमाल के लिए निकाले हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में भी सूचना प्रौद्योगिकी का। उसके बाद अगला इस्तेमाल है यहाँ पर कि आम जनता से संबंधित कार्यालयों जैसे कि आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, जल विद्युत, शहरी निकाय, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन आदि को पेपरलेस कार्यालयों में बदलकर इस प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वच्छ, पारदर्शी एवं अल्प व्ययी बनाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ऐसा हम सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर हम पेपर्स पर ज़्यादा ना निर्भर करें और सभी की सभी चीज़ें हमारे कंप्यूटर पर बहुत आसानी से हमारे पास अवेलेबल हों और बहुत ही पारदर्शी तरीके से वो हमारे पास अवेलेबल हों। उसके बाद लास्ट हमें अब यहाँ पर बात करनी है साइबर सुरक्षा की। तो साइबर सुरक्षा क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, ये हमें यहाँ पर बात करनी है। तो साइबर सुरक्षा को सूचना तकनीकी की सुरक्षा भी कहा जाता है, या फिर यह विविध कंप्यूटर नेटवर्क, महत्वपूर्ण व गोपनीय प्रोग्राम और डाटा के अनाधिकृत पहुंच, जिसको अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं, इसको रोकता है। मतलब कि क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और उनके गलत इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें बचानी है, जिसको लोगों तक नहीं पहुंचाना है हर डॉक्यूमेंट, अब मान लो मेरे बारे में कोई जानकारी है तो उसके बारे में मैं किसी और को नहीं बताना चाहती हूँ, गोपनीय रखना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ, तो वो भी आजकल कुछ ऐसे हैकर्स हो गए हैं कंप्यूटर के, वो क्या करते हैं, वो हैक कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, वो गलत तरीके से उन इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसका मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मेरी सिंपल एक इंसान की बात है, लेकिन अगर आप सोचो हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेना है, आर्मी है, कॉरपोरेट जगत जो है, बिजनेस जहाँ पर होता है, वित्तीय संस्थान जो हैं, और जो हॉस्पिटल है, और अलग अलग जो भी अलग अलग महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनके पास भी तो कई सारी गोपनीय सूचनाएँ होती हैं जिनको वो संग्रहित करते हैं, उनको वो इकट्ठा करके रखते हैं और टाइम टाइम पर उसको देखते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको कहीं पर भेजना है तो उसको भेजते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग गई जो उसका मिसयूज़ कर सकता है, तो आप सोचो कि हमारा जो देश है उसकी सुरक्षा ही खतरे में आ सकती है। इसलिए जो इतने गोपनीय, इतने सीक्रेट जो भी ये आंकड़े होते हैं, इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, और इनकी सुरक्षा करने के लिए ही साइबर सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाती हैं, ताकि ये जो हमारी साइबर सुरक्षा है इसको सच बनाया जा सके, गतिविधियों की आसानी से सुरक्षा की जा सके। तो बच्चों इसी के साथ में आपका चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अभ्यास कार्य के जो पीछे के प्रश्न हैं उनके उत्तरों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सन 1927 में प्रारंभ हुआ था हमारे देश में। तो आप ब ऑप्शन को करेक्ट कर लेना कि सन 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हमने पढ़ा था कि मुंबई में हुई थी, तो आप मुंबई को करेक्ट मार्क कर लेना। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि टेलीफोन यंत्र में मुंह के सामने रखे जाने वाले हिस्से को जो आवाज का संग्रहण कर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से सूचना का संचार करता है वो क्या कहलाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको माउथ पीस कहते हैं, तो आप अ ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसमें पहला प्रश्न है, सूचना तकनीकी पर आधारित वह मशीन जो ग्राफ चार्ट आदि को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है वो क्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा था कि फैक्स मशीन का इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हैं, तो यहाँ पर आप फैक्स लिख देना, फैक्स कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी वो प्रणाली है जिसमें मूलतः स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वह प्रणाली जिसमें डॉक्टर दूर स्थित रोगियों की दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से जांच एवं इलाज करता है। तो हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा था कि टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करके डॉक्टर एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई मरीज बैठा हुआ है तो वो दूर बैठे रहकर भी उस मरीज की इलाज कर सकता है, जांच कर सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, टेलीफोन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें टेली शब्द का अर्थ है दूर और फोन शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था कि फोन शब्द का अर्थ होता है ध्वनि। उसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि क्या होता है वो जो टीवी प्रसारण उच्च तकनीकों द्वारा अनेक मल्टी चैनलों के टीवी कार्यक्रम एक छोटे से डिश एंटीना की सहायता से बिना किसी केबल ऑपरेटर के उपग्रह के माध्यम से सीधे घर के अंदर स्थित टीवी पर देख सकते हैं, तो किस माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि DTH की हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप DTH डायरेक्ट टू होम लिख देना। उसके बाद जो अगले प्रश्न हैं वो प्रकार हैं, उनके प्रकार में बताया गया है कि वे लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनमें पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बतानी है सूचना प्रौद्योगिकी की। बच्चों पेज नंबर 141 पर आपको एक ब्लू कलर के डब्बे में सूचना प्रौद्योगिकी क्या है करके लिखा हुआ है। इसमें आपको परिभाषा लिखकर बताई गई है कि अभियांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सूचनाओं को दूरसंचार माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं भेजा जाता है उसी को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। मैंने आपको आसान भाषा में बताया था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो इंजीनियर्स होते हैं उस शाखा की पढ़ाई करते हैं और इंजीनियरिंग की उस शाखा की पढ़ाई करते हैं जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को, हमारी मैसेज को, सूचनाओं को भेजा जाता है और प्राप्त भी किया जाता है, तो उस शाखा की पढ़ाई को, उस शाखा को कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इंटरनेट पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के किन्हीं तीन संचार माध्यमों के नाम बताइए। तो आप नाम बता सकते हो, यहाँ पर आपने कई सारे उसकी बात की थी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप किन किन साधनों को रूप में इंटरनेट का यूज़ करते हो। पहला आपने बात की थी ई मित्रा के बारे में, उसके बाद आपने बात की थी ई कॉमर्स के बारे में, या फिर टेलीमेडिसिन के बारे में, या फिर ब्रॉडबैंड के बारे में, या फिर सोशल मीडिया के बारे में। तो यही सब नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद अगले प्रश्न है दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न है। इनमें से पहला प्रश्न है, टेलीविजन शब्द से क्या तात्पर्य है। टेलीविजन की कार्यप्रणाली को समझाते हुए वर्तमान युग में टेलीविजन के अत्याधुनिक एवं सुविकसित प्रकारों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, टेलीफोन के टाइम पर आपने पढ़ा था कि टेली का क्या मतलब होता है, दूर। उसके बाद विजन का क्या मतलब होता है, विजन का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिख पा रही है। तो दूर की कोई चीज़ जो आपको अपने टेलीविजन के ऊपर में दिख पाती है, उसी इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिवाइस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके जरिए आपको दिखाई दे पा रही है उसी को टेलीविजन कहते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि टेलीविजन की हेल्प से, टेलीविजन की मदद से आप चलते फिरते चित्र देख सकते हो और ध्वनि को भी आसानी से सुन सकते हो। ये जो टेलीविजन होते हैं दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, श्याम श्वेत और दूसरा रंगीन। और ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी प्रसारण केंद्र होते हैं जहाँ पर हमारे प्रोग्राम जो हम अपने टीवी पर देख रहे हैं उनको तैयार किया जाता है, तो उन जगहों पर प्रसारण केंद्रों में वो प्रोग्राम जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद उन प्रोग्राम्स को ध्वनि और चित्र के रूप में आपको तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बदल करके उनको आसमान में उनको भेजा जाता है, फिर वो सैटेलाइट की हेल्प से आपके जो एंटीनाज आपके घरों में लगे होते हैं उनके पास वो पहुंच जाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे पहुंच जाती हैं और वो जो एंटीना होते हैं उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं और उसके बाद आपके टीवी के अंदर में उनको फिर से वो ध्वनि और चित्र के रूप में बदल देते हैं और फिर आप आसानी से टीवी पर अपने फेवरेट प्रोग्राम को देख पाते हो। टेलीविजन में अलग अलग चीज़ें लगी होती हैं जैसे कि ट्यूनर, एम्पलीफायर, डिटेक्टर और पावर सप्लाई और पिक्चर ट्यूब और लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपको पता है आपको ये आवाज़ सुनने के लिए हेल्प करता है। पिक्चर ट्यूब को पर्दा कहा जाता है। पर्दे पर अलग अलग तरीके के प्रकाश संवेदी पदार्थ लगे होते हैं, करीब 200,000 प्रकाश संवेदी पदार्थ लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, इन पर जब लाइट पड़ती है तो उस लाइट को वो प्राप्त करते हैं और वो लाइट किस रंग की हमें दिखनी चाहिए उस रंग में वो फिर हमें दिखाते भी हैं। और उसके बाद में इसकी फंक्शनिंग करने के लिए आप रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने हाथों से भी उसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो टीवी को। रिमोट में अलग अलग बटन्स लगे होते हैं और उन बटन्स को जब आप दबाते हो तो उनमें से अदृश्य तरंगे उत्पन्न होती हैं जिनको टेलीविजन प्राप्त कर लेता है और उसी के हिसाब से वो काम करके आपको देता है। आजकल के अलग अलग तरीके के टेलीविजन के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि फ्लैट टीवी, एलसीडी टीवी जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी कहा जाता है, एलईडी टीवी जिसे लाइट एमिटिंग डायोड टीवी कहा जाता है, या फिर कर्व टीवी। तो ये अलग अलग तरीके के टीवीज के बारे में हमने बात कर ली। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों की, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट पर आधारित प्रमुख संचार माध्यमों के नाम बताते हुए किन्हीं दो का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंटरनेट के जरिए क्या होता है कि हम लोग एक जगह पर जो हमारा एक देश में कंप्यूटर रखा हुआ है वो दूसरे देश में रखे हुए कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड हो पाता है। तो इंटरनेट की हेल्प से क्या होता है कि जो अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर रखे होते हैं कंप्यूटरों के नेटवर्क को टेलीफोन लाइन की सहायता से जोड़ करके एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना मार्ग बनाया जाता है और इसके जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है वो पलक झपकते ही दूसरी जगह पर हम भेज सकते हैं। इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ है कि इंटरनेशनल और नेटवर्क, इन दो शब्दों को मिला करके इंटरनेट को बनाया गया है जिसका हिंदी में मतलब होता है विश्वव्यापी तंत्र या फिर विश्वव्यापी जाल, एक ऐसा जाल जो कि बेतार है, ऐसा तंत्र जिसमें आपको तार नजर नहीं आते। मतलब कि मैंने आपको समझाया था कि इंटरनेट की हेल्प से क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर इस देश में रखा है, मान लो भारत में आपका कंप्यूटर रखा हुआ है और आपको किसी इंसान से बात करनी है जो कि यूएसए में अमेरिका में बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजोगे और उस इंसान के पास जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसके पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा क्योंकि दोनों के पास में इंटरनेट की कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर में क्या हो रहा है कि आपका कंप्यूटर उसके कंप्यूटर से किसी तार की हेल्प से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आप उसको मैसेज भेज पा रहे हो, वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों के पास में इंटरनेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तंत्र सा बन गया है आपके कंप्यूटर में और उस इंसान के कंप्यूटर में जो यूएसए में अमेरिका में बैठा हुआ है, लेकिन आप दोनों के कंप्यूटर तार से नहीं जुड़े हुए, इसीलिए कहा जाता है कि एक बेतार का तंत्र है। उसके बाद जो ये इंटरनेट है इस पर हम इसके ऊपर आधारित अलग अलग सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ई मित्र का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं इंटरनेट की ही हेल्प से। तो पहला यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, टेलीमेडिसिन के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जब कोई डॉक्टर दूर किसी जगह पर बैठा हो तो वो कहीं और उनका मरीज बैठा हो उसकी वो जांच कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, वीडियो कर कॉल करके वो अपने मरीज को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसकी MRI, उसकी CT स्कैन, ECG की रिपोर्ट को, उनकी तस्वीरों को अपने कंप्यूटर पर वीडियो फाइल के जरिए खोल करके देख सकते हैं, जाँच कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है टेलीमेडिसिन। उसके बाद दूसरा मैं आपको बता देती हूँ बच्चों ई कॉमर्स के बारे में। इसके बारे में आपने पढ़ा था कि जब हम अपने इंटरनेट की हेल्प से कंप्यूटर के ऊपर कोई खरीद फरोख्त करते हैं, कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं जो हमें पसंद आ गई है, या फिर इंटरनेट की सेवा का इस्तेमाल करके हमारी चीज़ों को खरीदना या बेचना, या फिर हमारी चीज़ों का विज्ञापन करना, लोगों तक उसकी सूचना को पहुंचाना, इसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स के जरिए हमारा जो पूरा का पूरा विश्व है ये आजकल एक मंडी के रूप में बदल गया है, जहाँ पर आप छोटी से छोटी चीज़ को खरीद सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ को खरीद सकते हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो और जो भी चीज़ आपको खरीदनी है वो आपको बहुत आसानी से आपके घर में पहुंच जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए मानव जीवन के भविष्य को आतंकित करने वाले संभावित साइबर अपराधों की सूची बनाइए और इसकी सुरक्षा के उपाय भी बताइए। तो यहाँ पर हमने बच्चों बात की थी कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उपादेयता मतलब कि इसका यूजफुल किस रूप में है, किन किन रूपों में ये हमारे लिए कामगर है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। पहले तो आपको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम लोग जो हमारी सिस्टम है, जो हमारी सरकार की व्यवस्था है, उसको हम बहुत पारदर्शी बना सकते हैं, बहुत आसान बना सकते हैं आम लोगों के लिए। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं, जो भी पब्लिक की सुविधाएं होती हैं, लोगों से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, उनको हम सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से उसका हम कंप्यूटरीकरण कर सकते हैं, कंप्यूटर पर सारी की सारी सुविधाएं मौजूद करा सकते हैं, ताकि कोई भी इंसान कहीं पर भी बैठा हो वो बहुत आसानी से उस सुविधा का इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में हम इसका सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बैंकिंग में जो भी चीज़ें आपने ट्रांजैक्ट करी है, मतलब कितना पैसा आपने अपने अकाउंट में से निकाला है, उसमें कितना पैसा डाला है, किस लिए उसका इस्तेमाल किया है, उन सभी चीज़ों का भी आपको कंप्यूटर की हेल्प से आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो। वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी बहुत एडवांस हो रही है। उसके बाद सरकार क्या कर सकती है, सरकार भी आजकल बहुत सारे ऐसे साधन तैयार कर रही है जिसकी मदद से आपको आपके राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली के बिल भरने के साधन और भी कई सारे साधन वो कंप्यूटर पर उपलब्ध करा रही है, जिसकी मदद से क्या होता है, लोग बहुत आसानी से अपने घर बैठे ही इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल वो कर पाते हैं। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि इन सब चीज़ों को कंप्यूटर पर अवेलेबल कराने के वजह से, उपलब्ध कराने के वजह से कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे तत्व भी पैदा हो गए हैं जो क्या करते हैं, इन इंफॉर्मेशंस का, इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सरकार है, जो भी संस्थानें हैं, उनको ज़रूरी है कि वो इन सभी इंफॉर्मेशंस को, जानकारियों को एक ढंग तरीके से रखें अपने पास और उनकी सुरक्षा का वो पूरा पूरा इंतज़ाम करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी गलत हाथ में ना पहुंचे, ताकि हमारी जो राष्ट्र की सुरक्षा है उस पर कोई खतरा ना पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर हमें उपाय भी सुझाने हैं ताकि हम साइबर अपराधों को कम करने में मदद कर पाएं। तो इसीलिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके, उनका निर्माण करके हमारी साइबर जो सुरक्षा है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जो साइबर अपराधी हैं वो ऐसे कोई अपराध को ना कर पाए। जो भी सरकार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सेना की जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे किसी हॉस्पिटल की, चाहे किसी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है, उन्हें हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए ताकि कोई गलत इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए था, वो उनकी इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंच पाए और उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो बच्चों इसी के साथ में आपका जो ये अध्याय है ये पूरा ख़त्म हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने अध्याय को रिवाइज करना है, एक बार पढ़ लेना है, खुद से अभ्यास कार्य के जो प्रश्न हैं उनको खुद करने की कोशिश करनी है, और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।